స్వయం రూప కదా మహ్యం దాతి వందేహం శ్రీకమలం శ్రీగరూన్ వైష్ణవాశ్చ శ్రీరూపం సాగరజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిచన సహితం కృష్ణచైతన్యదేవం సహగణలలితా శ్రీవిశాఖాంశ నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపేషాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిని నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి వాంఛాకల్పతరూభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభునిత్యానందం శ్రీవాసాది గౌర భక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. తో ఆఠవా సూత్ర का निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास. तो निरोध शब्द की व्याख्या यहाँ की गई है कि उन रीति रिवाजों को, सामाजिक रीति रिवाजों को और ऐसे शास्त्रों को जो कि भक्ति के विरोध में है, इनको त्यागना. तो और विस्तार में ये वैराग्य या विरक्ति क्या है ये नौवे सूत्र में कहा गया है. तस्मिन अनन्यता तत् विरोधी विरोधिषु विरोधिषु उदासीनता च. तो तस्मिन, तो इनके इसके दो भाग हैं. तो वैराग्य यदि किसी के अंदर है और सच्चा वैराग्य, तो इसके दो लक्षण होने चाहिए जिनका उल्लेख इस सूत्र में आता है. पहला तस्मिन अर्थात उनके लिए, किन के लिए, भगवान कृष्ण के लिए अनन्यता, अनन्य भाव होना चाहिए, पहली बात. और दूसरी बात तद विरोधिषु, तद मतलब उनके प्रति या उनके भक्ति के प्रति विरोधिषु, जो भी विरोधात्मक वस्तुएं हैं, बातें हैं इत्यादि, उदासीनता, ऐसे विरोधी वस्तु व्यक्ति स्थान आदि के प्रति उदासीनता होनी चाहिए, उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए. तो दो चीज़ें यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं. तो जहाँ तक अनन्यता की बात है, ये तो हमने सुन ही लिया है अनन्य भक्ति क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम. तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, तो इसके बारे में कोई कुछ संक्षिप्त तात्पर्य बता सकते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम. हाँ,
रूप स्वरूप तथा शुद्धम भक्ति की परिभाषा में तो इसके बारे में बताते हैं अन्याभिलाषिता शून्य. तो इसके बारे में चर्चा करते हुए बोलते हैं कि ऐसे कोई भी इच्छाएं या कार्य जो कि भक्ति के विरोध में हो और भक्ति के सहकारी ना हो, उनसे उनको ना करना. लेकिन इता शब्द का अर्थ इसमें वो बाद में जोड़ते हैं, बताते हैं कि
अन्याभिलाषिता.
तो इसके बारे में बताते हैं कि अगर ऐसे कुछ विचार हैं, वांछाएँ हैं जो कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए हो या फिर ऐसे कुछ जो बहुत जरूरी कार्य के लिए हो, तो उसको रखना चाहिए, उनको कर सकते हैं.
हाँ हाँ, तो ऐसा नहीं कि हर कार्य हमारा केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो. कभी कभी ऐसे परिस्थितियाँ भौतिक सृष्टि में होती हैं कि भले हम भगवान के प्रसन्नता के लिए न करें, पर जैसे कि द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए, अपने मान की रक्षा के लिए गोविंद को पुकारा। गोविंद को प्रसन्न करने की इच्छा से नहीं पुकारा गोविंद का नाम, अपनी रक्षा के लिए। परंतु ये एक बहुत ही आपातकालीन स्थिति है, प्राण की रक्षा करने के लिए है। तो ऐसे बहुत ही विशेष परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति भक्त भगवान को सहायता के लिए पुकारता है या पुकारती है, तो ये उनके शुद्ध भक्ति में दोष नहीं है। ठीक है, ऐसे एक निष्कर्ष होता है हमारे आचार्यों के मत में। फिर भी ये एक आदत नहीं बन जानी चाहिए। ता ना, प्रभु ता, और कोई शब्द बता सकते हैं तो ऐसे ता में समाप्त होता है शब्द, फिर ता में
श्रेष्ठता,
भगवत्ता, श्रेष्ठता, तो क्या मतलब होता है ये ता? क्या चीज होता है? प्रभुता, व्यस्तता,
हमेशा रत,
एक स्वभाव, एक स्वभाव है उसका, नित्य स्वभाव है भगवत्ता। ये भगवान का स्वभाव है ना, भगवत, भगवान होना। व्यस्तता, कुछ किसी चीज का होना और अधिक समय के लिए होना या लंबे समय के लिए होना या सदैव होना, है ना। तो इसलिए भगवत्ता, प्रभुता इत्यादि। उसी तरह से अन्याभिलाषिता, यदि अन्य अभिलाषा केवल आपातकालीन परिस्थिति में हो तो ठीक है, परंतु ये अभिलाषिता, अन्याभिलाषिता हो, मतलब ये बार बार हो जाए। हम बस में जा रहे हैं, प्रभु मुझे बैठने के लिए सीट दीजिए, प्रभु मुझे आज हो सकता है, मैं गुलाब जामुन बहुत प्रिय, आज गुलाब जामुन मुझे दिला दीजिए। तो एक आदत बन जाना, बार 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 भगवान को बुलाना अपनी छोटी 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 इच्छाओं के लिए, बड़ी इच्छाओं के लिए भी। मुझे 10 करोड़ चाहिए, जो कि हो सकता है भगवान के सेवा के लिए कोई संबंधित न हो, हम चाहते हैं ऐसे ही। तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, फिर वो दोष हो जाएगा, फिर वो मिश्र भक्ति हो जाएगा, एक आदत बन जाए, अभिलाषिता हो जाए। तो इसलिए ये एकाध बार कभी ऐसे हो जाता है तो फिर ठीक है, अन्यथा एक अनन्य भाव। ये कौन से भगवद गीता के श्लोक में आता है? अनन्या चिंतयन्तो मां येजुवा परिपासते येषां युक्त्या चिन्तानां योगक्षेमं भवति। तो ये अनन्य शब्द अनेकों बार आता है। तो अनन्यास, अनन्याः चिंतयन्तः मां, तो जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। और कोई श्लोक में अनन्य आता है? अनन्या शक्ता भक्त्या तु अनन्याः शक्ता। तो अनन्य भक्ति से ही मुझे आप जान पाओगे। तो अनन्य भाव, अनन्य भक्ति का उल्लेख भगवद गीता में आता है, भागवतम में आता है, क्योंकि भक्ति के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जब अनन्य बात आती है तो इसका मतलब है कि क्या अनन्य बात अनन्य भक्ति है क्या, जो कि अनन्य नहीं है? है ना, इसको मिश्र भक्ति कहते हैं। इसलिए तो फिर ये अनन्य भक्ति है, इसके अन्य शब्द हैं केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति, उत्तमा भक्ति। तो ये सारे अलग अलग शब्द हैं अनन्य भक्ति के कारण अकेले। तो अनन्य भक्ति के अतिरिक्त जो होता है वो है मिश्र भक्ति। मिश्र भक्ति अर्थात जिसमें कोई मिश्रण है, मिलावट है। भगवान को प्रसन्न करना है, परंतु भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा के अतिरिक्त हम अपने आप को भी प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ये मिश्र भक्ति हो गई। इसलिए केवल अनुकूलन कृष्ण अनुशीलनम इतना पर्याप्त नहीं है। क्यों नहीं है? भक्ति की परिभाषा यदि इतनी ही हुई होती कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्रियाशील रहना, इतना ही कहने से ये भक्ति नहीं है, ये साधारण भक्ति है। क्यों इतना पर्याप्त क्यों नहीं है? हाँ बोलो बोलो।
अपने बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, हमारा धर्म जो कि हम अपेक्षा करना चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में विवरण नहीं है, इतना शायद इतना वास्तव।
ठीक है, एक उदाहरण देते हैं। यदि मुझे मेरे लिए बहुत से पैसे चाहिए, धनी बनना है मुझे, और मैंने सुना है कि कृष्ण की उपासना करने से कृष्ण भगवान पैसे दे देंगे, ऐसे मैंने सुना, तो मैं अभी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सेवा करता हूँ, नाम जप करता हूँ, कीर्तन करता हूँ, अर्चा विग्रह की सेवा करता हूँ। क्यों करता हूँ? प्रसन्न करना चाहता हूँ उनको, मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, परंतु कुछ पाने के लिए, इसमें स्वार्थ है। तो फिर ये साध मिश्र भक्ति है। तो केवल इतना कहना कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ ये काफी नहीं है। इसलिए फिर अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम। तो साधारण भक्ति और मिश्र भक्ति और अनन्य भक्ति में अंतर यह है। स्वरूप लक्षण भक्ति का यह है कि हम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, और जब इस साधारण भक्ति में ये निस्वार्थपन जोड़ा जाता है तब वो उत्तमा भक्ति या अनन्य भक्ति हो जाता है। तो फिर ये अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम, ये जोड़ना चाहिए साधारण भक्ति को, तब साधारण भक्ति शुद्ध भक्ति हो जाती। तो मिश्र भक्ति भी कई प्रकार की होती है। हम भगवद गीता पढ़ते समय जानते हैं कि हर चीज का विश्लेषण तीन गुणों के दृष्टिकोण से किया जा सकता है, तो उसी प्रकार से भक्ति भी, सात्विक भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति, तो इसके बारे में कोई कुछ बता सकते हैं? हाँ, भगवान कपिल देव बताते हैं, क्या कहते हैं?
वो श्रद्धा के ऊपर बताते कि आपकी राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा या सात्विक श्रद्धा है।
श्रद्धा की बात नहीं, वो कार्यों को बताते हैं।
यस, विद व्हाट इंटेंशन यू आर डूइंग,
कार्य
किसी को हार्म करने के लिए।
तो तामसिक भक्ति क्या है? मतलब भक्ति तामसिक है,
भक्ति तामसिक है।
जो भक्ति करने वाला व्यक्ति तामसिक है, इसलिए उसके भक्ति को तामसिक भक्ति कहते हैं। वैसे भक्ति तो शुद्ध है, अलौकिक है, दिव्य है, परंतु जब भक्ति करने वाला अशुद्ध होता है, तामसिक होता है, तो उसकी भक्ति को तामसिक कहते हैं। तो जब कोई भक्ति करता है हिंसा के दृष्टि से, क्रोध के दृष्टि से, ईर्ष्या के दृष्टि से ज्यादा, तो उसे तामसिक भक्ति कहते हैं। उसी प्रकार से राजसिक भक्ति वो है जो कि एक राजसिक व्यक्ति करता है किसी राजसिक उद्देश्य के लिए। राजसिक व्यक्ति यदि शुद्ध उद्देश्य से करता है तो उसे राजसिक भक्ति नहीं कहते हैं। एक राजसिक व्यक्ति राजसिक उद्देश्य के लिए कुछ धन कमाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए आदि, भोग के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो उस भक्ति को राजसिक भक्ति कहते हैं। सात्विक भक्ति क्या है? जो हम पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए आदि करते हैं, ये सात्विक भक्ति है। स्वयं वो पापी नहीं है, परंतु पूर्वकृत पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए ऐसे भक्ति करता है। तो ये सात्विक भक्ति, राजसिक और तामसिक, इन तीनों में से कौन से स्वार्थी हैं, तीनों स्वार्थी हैं। यद्यपि स्वार्थ के गुणवत्ता में और मात्रा में अंतर है, बहुत घोर अंधकार में है तामसिक भक्त, उससे कम राजसिक भक्त और उससे कम सात्विक भक्त, फिर भी कपिल देव किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? पृथक भावम और भिन्न धृक। पृथक उनका भाव है भगवान से, पृथक अर्थात अलग, भिन्न। तो जिस भक्त का भाव, जिस भक्त का विचार या उनकी जो एक धारणा है वो भगवान से भिन्न है, उसे मिश्र भक्ति कहते हैं। तो मिश्र भक्ति किन से मिश्र हो सकता है? तमोगुण से, रजोगुण से, सतोगुण से। इनमें से सात्विक व्यक्ति श्रेष्ठ है तीनों में से, फिर भी भिन्न दृक है, उसकी दृष्टि भी भिन्न है भगवान से, तो ये सब मिश्र भक्ति कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त है निर्गुण भक्ति, जो तीन गुणों से परे हैं। तो कपिल देव इन तीन प्रकार के भक्तियों का उल्लेख करने के बाद निर्गुण भक्ति की परिभाषा देते हैं। कोई बता सकते हैं निर्गुण भक्ति की परिभाषा क्या है कपिल देव के शब्दों में? हाँ,
श्लोक है,
श्लोक
आई तो की अव्यवहिता या भक्ति ही
पूरी। इससे पहले
देवानां गुणानां, इससे पहले का
पता, ठीक है, ये बोल लो।
आई तो की अव्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तम है, सालोक्य साष्टी सामिप्य सारूप्य एकत्वं दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना स एव भक्ति योगाख्य अत्यंतिक उदारितः।
बहुत अच्छा। तो ये भक्ति अत्यंतिक उदारित, तो इसकी व्याख्या करते हैं, विस्तार में बताते हैं। इन दो श्लोकों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, परंतु इसके पहले कौन सा श्लोक बोलते हैं और उसके बाद ये जो श्लोक बोलते हैं, फिर उसकी व्याख्या इन दो श्लोकों में करते हैं, इस श्लोक में करते हैं। मयि सर्व गुहाशये मनोगति अविच्छिन्ना यथा गंगाम भसम बुधौ। वो कहते हैं कि जब कोई मत गुण, कपिल देव स्वयं भगवान है ना, तो मत कहते हैं मेरे, मत गुण श्रुति मात्रेना, केवल मेरे गुणों को सुनने मात्र से, मैं मेरे बारे में, मैं जो कि सबके हृदय में विराजमान हूँ, मई सर्व गुहा गुह आशये, गुह मतलब गुफा है परंतु यह हृदय, तो मैं तो सबके हृदय में बैठा हूँ। जब मेरे प्रति कोई कथा सुनने की इच्छा होती है, सुनने मात्र से मनोगतिर अविच्छिन्ना, मन की गति मेरी कथाओं की ओर बढ़ती है अविच्छिन्ना, बिना कोई रुकावटों को देखकर, रुकावटें हैं भी तो उनको पार करके, तो वो निर्गुण भक्ति है। और ये उदाहरण उपमा क्या दी गई है, यथा गंगा अम्भसौ अम्बुधौ, अम्भसौ अर्थात पानी जल, और अम्बुधौ अम्बुध सागर, कि जैसे गंगा का जल सागर की ओर रुकावटों को पार करके जाती है, जाता है, उसी प्रकार से ऐसे शुद्ध भक्त का मन रुकावटों से इधर उधर हो के भी मेरे गुणों के प्रति सीधे चले जाता है, आकृष्ट होता है, स्वाभाविक रूप से मन की गति मेरी कथाओं की ओर चलती है। तो इस प्रकार का जो एक तीव्रता से स्वाभाविक कथा के प्रति आकर्षण होना, भगवान के प्रति आकर्षण होना, ये निर्गुण भक्ति है। इसमें स्वार्थ नहीं है, तीनों गुणों का मिश्रण नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी की टीकाओं की भी चर्चा हो रही है कि कर्म मिश्र भक्ति ज्ञान मिश्र भक्ति हो सकता है। कर्म मिश्र भक्ति क्या है और ज्ञान मिश्र भक्ति क्या है, कौन बताएंगे? कर्म मिश्र भक्ति, अच्छा ये पहले श्लोकों की चर्चा करनी थी ना, इसके बाद कपिलदेव ये कहते हैं कि शुद्ध भक्ति में जितने भी ये मुक्तियां हैं वो भी शुद्ध भक्त को नहीं चाहिए होते हैं। जितने भी सारष्टी सामीप्य सालोक्य इत्यादि सब नहीं चाहिए उनको, केवल भगवान की सेवा मात्र चाहिए। या भक्ति पुरुषोत्तम है, ऐसे पुरुषोत्तम के प्रति जो भक्ति होती है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो कर्म मिश्र भक्ति क्या है?
कर्म मिश्र भक्ति के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के मार्ग को अपनाता है लेकिन वो जो अर्चना करता है वो भगवान स्वयं ही करता है, और जो फलों को वो आकांक्षी होता है, फलों को आकांक्षी होता है, लेकिन उसमें जो कर्म की जो श्रद्धा होती है वो होती है और भक्ति सहकारी होती है उसमें वो फलों को प्राप्त करने के लिए। और जो ज्ञान मिश्र भक्ति होती है उसमें ज्ञान की मात्रा ज़्यादा होती है, उसकी श्रद्धा ज्ञान की होती है और भक्ति उसमें सहकारी होती है, और उसके जो मुख्य ध्येय है वह ब्रह्मन को प्राप्त करना है, लेकिन वह पूजा अर्चना जो है वो अभिधेय जो है वो उसमें भक्ति को भी वो जोड़ता है, लेकिन उसका जो प्रयोजन है वो
क्या? इसमें थोड़ा सूक्ष्म अंतर है, थोड़ा भिन्नता है। यदि भक्ति की प्रधानता नहीं है तो उसे भक्ति नहीं कहेंगे फिर। हाँ, तो जब भक्ति की प्रधानता होती है परंतु कर्म भी होता है उसमें, तब वो कर्म मिश्र भक्त कहलाता है। है वो भक्त परंतु थोड़ी भौतिक इच्छाएं भी है, उसी प्रकार से है कोई व्यक्ति भक्त परंतु बीच बीच में एक ज्ञान योग की भी कुछ इच्छाएं आ जाती हैं, तो ज्ञान मिश्र भक्त है। या मानसिक चिंतन की वृत्ति है वो भी प्रविष्ट हो जाती है तो वो ज्ञान मिश्र भक्त हो जाता है। हाँ, तो यदि प्रधानता ज्ञान योग की है तो वो ज्ञानी बन जाता है, यदि कर्म की प्रधानता है तो वो कर्मी बन जाता है, और ज्ञान योग ऐसे ज्ञान योगी को आवश्यक है कि वो भक्ति योग की सहायता ले ले अपने ज्ञान योग के रास्ते में सफलता प्राप्त करने के लिए। भक्ति योग की सहायता लिए बिना कोई भी योगी अपने रास्ते में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति इत्यादि का उल्लेख भी हमें समझ लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी अकाम होना इसका अर्थ क्या है बताते हैं। अकाम क्या इसका अर्थ है कि कोई कामना नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर, कोई भावना कोई विचार कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए? किस तरह की इच्छाएं हो सकती, क्या इच्छाओं को शून्य कर सकते हैं?
नहीं,
हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण के इच्छाओं के अनुसार, तो जीव गोस्वामी पाद के टीका से परिभाषा से प्रभुपाद जी कहते हैं भजनीय परम पुरुष सुख मात्र स्व सुखत्वम। इसका अर्थ क्या है? भजनीय, जो भजन करने योग्य हैं, कौन है भजनीय हमारे लिए?
भगवान
कृष्ण जो कि परम पुरुष है। भजनीय परम पुरुष सुख मात्र, ऐसे भजनीय परम पुरुष श्री कृष्ण के सुख मात्र के लिए और ऐसे सुख में ही स्व सुखत्वम। व्यक्ति जब आनंद लेता है, सुख लेता है, तो वो अकाम है। दूसरे शब्दों में भगवान के सुख में ही जब कोई व्यक्ति अपना सुख समझता है तो वो अकाम है। भगवान सुख है, सुखी हैं तो मैं सुखी हूँ, भगवान यदि सुखी नहीं रहेंगे तो मैं भी सुखी नहीं हूँ। जिसकी भावना ऐसी है वो अकाम है वास्तव में। कितनी सुंदर परिभाषा है, भजनीय परम पुरुष सुख मात्रम स्व सुखत्वम। ये बताइए फिर से,
भजनीय परम पुरुष सुख मात्रम स्व सुखत्वम।
भजनीय परम पुरुष सुख मात्रम स्वसुखत्वम्। तो केवल भगवान श्री कृष्ण के सुख में सुख देखना, सुख का अनुभव करना, अन्यथा नहीं, ये अकाम है। मापदंड ये कोई कैसे, हमारे आचार्यों ने स्पष्टीकरण किया हर एक चीज का, इतने सूक्ष्मता से सारी परिभाषाएं दी हैं जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। और ऐसे कृष्ण के सुख मात्र में स्वसुखत्व होना, सबसे ऊंचे उदाहरण कौन से हैं?
गोपियां।
तो वृंदावन की गोपियों का उदाहरण है सर्वश्रेष्ठ। रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। व्रज गोपियों से, व्रज वधुओं से श्रेष्ठ, इस तरह की भावना और किसी की नहीं है। और साथ साथ में ये जो एक अनन्य भाव है कृष्ण के प्रति, क्योंकि यहाँ पे अनन्यता की बात हो रही है ना, तस्मिन अनन्यता, तो ये एक कोई संकुचित सोच की बात नहीं है कि मैं केवल कृष्ण की उपासना करूंगा इसलिए अन्य लोगों के प्रति मेरी सब घृणा है। जैसे कई लोगों की धारणा ऐसे होती है दुनिया में, उनके इष्ट देव को मानकर वो और सभी का तिरस्कार करते हैं, उनके प्रति अपमान करते हैं, धिक्कारते हैं। तो ये इस प्रकार की संकुचित सोच नहीं है, क्योंकि कृष्ण संपूर्ण है और सब कुछ श्री कृष्ण के अंतर्गत है। कोई भी वस्तु श्री कृष्ण के बाहर नहीं है, श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है, भिन्न नहीं है। इसलिए जब कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है तो अपने आप ही सबसे प्रेम करता है, देवताओं से भी प्रेम करता है, नास्तिकों से प्रेम करता है, जानवरों से प्रेम करता है, सृष्टि से प्रेम करता है, परंतु मूल क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम जहां है वो हर चीज से, हर व्यक्ति से प्रेम करता है, क्योंकि हर वस्तु, हर चीज, हर व्यक्ति का संबंध श्री कृष्ण से होता है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, एक महिला का, तरुणी का, जिसका विवाह होता है। विवाह से वो अपने पति के साथ संबंधित हो जाती है ना, पति पत्नी का संबंध स्थापित हो जाता है। परंतु क्योंकि पति का संबंध अनेक लोगों से है, जैसे पति के भाई हैं, पति के बहन हैं, पति के माता पिता हैं, तो क्योंकि अब इस महिला ने उस व्यक्ति से विवाह किया है, तो जिन व्यक्तियों का संबंध पति से है उनका संबंध पत्नी से भी अपने आप हो जाता है। अभी कोई उनके दामाद बन जाते हैं, कोई सास ससुर बन जाते हैं, कोई अलग अलग ऐसे संबंध स्थापित हो जाते हैं। कैसे स्थापित होते हैं? उस एक मूल संबंध के कारण। कौन सा है वो संबंध? पति पत्नी का संबंध। जैसे ही वो महिला एक व्यक्ति की पत्नी बन गई, तुरंत अनेक संबंध एक साथ हो जाते हैं उस एक संबंध के कारण। वो संबंध नहीं हुआ तो फिर अन्य संबंध नहीं रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति अपना सही संबंध प्रेम में श्री कृष्ण के साथ बना देता है, तो अपने आप श्री कृष्ण के रिश्तेदार जितने भी हैं सब उन्हें हमारे संबंधी हो जाते हैं। और श्री कृष्ण के रिश्तेदार कौन है? सब है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्ममाद्योनि अहं बीजः प्रदापिता। तो श्री कृष्ण परम पिता हैं और हम सब उनके परिवार के सदस्य हैं। तो कृष्ण से हमने संबंध स्थापित कर लिया तो सारे कृष्ण के परिवार से हमारा संबंध स्थापित हो गया, तो द्वेष करने की संभावना नहीं है। हाँ, क्या प्रश्न है?
वो नास्तिक लोग रहता है ना, वो नास्तिक करने को अपोजिट करता है, वो विरोधाभास होता है।
नहीं, नास्तिक लोग विरोध करेंगे, परंतु शुद्ध भक्त के हृदय में नास्तिकों के प्रति द्वेष और घृणा नहीं होती है, वो उनका भला ही चाहते हैं। ये दृष्टि है कि ऐसे शुद्ध भक्त का प्रेम सबके प्रति होता है, यहाँ तक कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना शत्रु मानते हैं, ऐसे तथाकथित शत्रुओं के प्रति भी उनके मन में प्रेम रहता है। ये कहने का तात्पर्य है। तो जो कृष्ण को प्रेम करता है वो सबको प्रेम करता है, जो कृष्ण से प्रेम नहीं करता वो किसी से करेगा किसी से नहीं करेगा, किसी से प्रेम करेगा किसी से द्वेष करेगा, और वो तथाकथित प्रेम भी सच्चा प्रेम नहीं है। शारीरिक स्तर की आसक्ति है, ठीक है। तो इसलिए ये बात बताना आवश्यक है। भक्ति रसामृत सिंधु में पहले प्रारंभ में प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण भक्ति एक स्विच के समान है, बिजली का स्विच। हम कमरे में जाते हैं, अंधकार होता है, बिजली का स्विच चालू कर देते हैं, क्या होता है?
प्रकाश,
सब जगह प्रकाश हो जाता, सब दिखाई पड़ता है, टेबल कहाँ है, कुर्सी कहाँ है, क्या कहाँ है। तो कृष्ण भक्ति का उदय जब हृदय में हो जाता है, सब स्पष्ट हो जाता है। ये मेरे शत्रु नहीं है कोई, सबसे प्रेम होना है। तो ये है अनन्यता, परंतु उसके लिए अनन्यता चाहिए। यदि उस अनन्यता में कोई अभाव है तो उस हद तक हम अन्यों से प्रेम नहीं करेंगे। जितने ज्यादा हम कृष्ण से प्रेम करेंगे उतने ज्यादा हम अन्यों से भी प्रेम करेंगे। तो अभी इस श्लोक में, नौवें श्लोक में दो चीजें बताई गई थी ना, तस्मिन अनन्यता, और दूसरी बात क्या थी, तत् विरोधिषु विवासिन्यता। अब इन दो चीजों की परिभाषा दो श्लोकों में देंगे नारद मुनि। अब पहले व्याख्या करेंगे अनन्यता का, इसलिए दसवां सूत्र है ना यहाँ पे। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अनन्यता अर्थात अनन्यता। तो अनन्यता की परिभाषा दी गई है कि अन्य आश्रयाणाम त्याग। तो अनन्य भक्ति कहते हैं ना, तो अनन्य भक्ति का अर्थ क्या है कि कृष्ण को ही एकमात्र आश्रय मानना। माम एकम शरणम व्रज, एकम तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त और अन्य जितने भी आश्रय हैं उनको त्यागना। अन्य आश्रयाणाम त्याग, ये है अनन्यता। तो अन्य आश्रय किस प्रकार के हो सकते हैं कृष्ण के अतिरिक्त?
देवी देवता,
देवी देवताओं की का आश्रय लेना कि ये मुझे बचाएंगे, और
भौतिक
कुटुंब के का आश्रय लेना,
धन का, भौतिक वस्तुओं का,
अपने संपत्ति का आश्रय लेना,
बल का
आश्रय लेना,
बुद्धि का आश्रय।
और जो भगवद गीता में बताए गए पद्धतियां हैं उनमें से कौन से चीजों का आश्रय लेना?
कर्म
का आश्रय लेना, ज्ञान योग का आश्रय लेना, वर्णाश्रम धर्म के तरह तरह के जो कर्तव्य हैं उनका आश्रय लेना, अष्टांग योग, ये योग, वो योग, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका आश्रय लिया जा सकता है, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान। तो अन्य जितने भी आश्रय हैं उनको त्यागना, ये अनन्यता है कृष्ण के अतिरिक्त। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? माम एकम शरणम व्रज, क्योंकि माम एकम शरणम व्रज में सर्वधर्मान परित्यज्य आ जाता है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसी श्लोक की व्याख्या है। अन्य आश्रयों को त्यागना अर्थात अन्य धर्मों को त्यागना, और अनन्यता अर्थात माम एकम शरणम रजा। ठीक है,
प्रश्न। कभी कभार हम सुनते हैं कि हमें कृष्ण का आश्रय लेना है लेकिन दूसरे धर्मों का त्याग करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कर सकते हैं लेकिन कृष्ण आश्रित होके उन कर्मों को करने से कुछ गलती नहीं है, ऐसे कुछ टीकाकार बोलते हैं, तो इसको कैसे समझें मैं?
किस संदर्भ में ऐसे कहा गया ये सोचना है। जैसे यदि हम समझें कि भगवान एक ही है, चाहे आप उन्हें कृष्ण कहो, आप उन्हें राम कहो, आप जो भी नाम, यदि आप मानते हैं कि वास्तव में एक परम सत्य है तो उनको त्यागे परंतु कृष्ण नाम लीजिए। तो प्रभुपाद जी ने भी ऐसे कहा है कि आप फिर भगवत प्रेम आपके हृदय में होना चाहिए, किसी धर्म की श्रेष्ठता की परीक्षा कब ली जाती है या किसी धार्मिक व्यक्ति की श्रेष्ठता की परीक्षा किस बात से ली जा सकती है? भगवत प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं। तो भले कोई किसी की उपासना कर रहे हो परंतु जैसे आप विज्ञान में कहते हो ना, लिटमस टेस्ट, परीक्षा, परीक्षा क्या है कि भगवत प्रेम कहाँ तक जागृत हुआ है हृदय में। यदि भगवत प्रेम नहीं है तो फिर वो धार्मिक व्यक्ति भले किसी भी सभ्यता में क्यों ना हो, वो अभी तक परिपूर्णता प्राप्त कर नहीं कर चुका है। तो ये प्रभु इस बात पर प्रभुपाद जोर देते थे। ठीक है, अभी अनन्यता की परिभाषा हो गई। अभी दूसरी बात, तद विरोधिषु उदासीनता, इसकी परिभाषा 11वें श्लोक में आई। लोक वेदेशु तत् अनुकूलाचरणम् तत् विरोधिषु उदासीनता, विरोधिषु उदासीनता, तो तत् विरोधिषु उदासीनता, इसके बारे में भी व्याख्या है। यहाँ तत् मतलब क्या? तत् मतलब वो अभी जिसकी परिभाषा पहले की है इस सूत्र में। तो लोक वेदेशु तद अनुकूल आचरणम्, लोक अर्थात जो कि समाज के रीति रिवाज हैं, और वेदेशु अर्थात जो वेदों में कोई नियम विधि निषेध आदि हैं, तो उन्हीं को हमें लेना चाहिए, उन्हीं रीति रिवाजों को लेना चाहिए, उन्हीं वैदिक शास्त्रों के आदेशों को लेना चाहिए जो कि कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल हैं। इसका अर्थ है विरोधिषु उदासीनता, अर्थात जो भक्ति के प्रतिकूल हैं, सामाजिक रीति रिवाज या वैदिक शास्त्रों के विधि निषेध, उनको हमें त्यागना चाहिए। जो भगवान के भक्ति के अनुकूल है उन्हीं को स्वीकार करना चाहिए मात्र, बस। इसको तत् विरोधिषु उदासीनता कहते हैं। इस बात को समझाएंगे अभी आप, कोई अपने शब्दों में समझाइए। बहुत कठिन हो गया, हाँ समझाओ।
लोक वेदेषु तत् अनुकूल आचरणम् और दूसरा है तत् विरोधिषु उदासीनता। तो लोक यानी कि लोक जो समाज में विधि विधान है या फिर
रीति रिवाज
है, और वेदों में जो
आदेश
है, आदेश हैं, जो विधि निषेध हैं, वो उनके लिए यानी कि जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल है उसका आचरण करना, और तद फिर से जो
नहीं इसी को उदासीनता कहते, इस तरह की उदासीनता, विरोधिशु उदासीनता जो शब्द पहले इस्तेमाल किया गया था ना, निरोध के बारे में कहा गया था अनन्यता और तद विरोधिशु उदासीनता। तो अनन्यता की परिभाषा पिछले श्लोक में हो गई, अभी तद उदासीनता की परिभाषा हो रही है। तो तद उदासीनता जो जो विरोधी विरोधिशु उदासीनता क्या है, केवल उन चीजों को स्वीकार करना जो भक्ति के लिए अनुकूल है। अपने आप ही हो जाएगा कि जो अनुकूल नहीं है उसको आप नहीं करेंगे स्वीकार, उसको त्यागेंगे। तो ये अपने आप हो जाता है, ठीक है। और कोई समझाएंगे इस सूत्र का अर्थ क्या है?
नहीं,
पहले सूत्र का अर्थ समझाएंगे इसके बाद एग्जाम्पल दे। ये क्या किसकी परिभाषा हो रही है यहाँ पर इस सूत्र में? तद विरोधिशु उदासीनता। क्यों इसका इसकी परिभाषा हो रही है? हाँ, किस संदर्भ में आया था? नहीं, निरोध विरक्ति, वैराग्य की बात आई थी। और विरक्ति के दो भाग बताए गए थे, एक था अनन्यता और दूसरा तद विरोधिशु उदासीनता। अनन्यता की व्याख्या हो गई। अभी भक्ति का जो एक वैराग्य का जो एक अंग है कि ये हम उदासीन रहें विरोधी वस्तुओं के प्रति, उसकी यहाँ पे व्याख्या हो रही है। तो क्या व्याख्या है?
कुछ रीति रिवाज रहता है या लोकाचार में या कर्मकांड वगैरह में, तो अगर वो भक्ति के अनुकूल है तो हम उसको स्वीकार करना चाहिए।
तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
जो प्रतिकूल है उसको
त्यागना चाहिए। तो यही है तद विरोधिशु उदासीनता। अभी उदाहरण दे।
जैसे वो कोंकण बेल्ट में कारवार वगैरह उस एरिया में एक तुलसी विवाह होता है, तो एवरीबॉडी जो डिवोटी नॉन डिवोटी रोज फीस करता है जो भी करता है वो एक तो बड़ा प्रेम से उस दिन सालिग्राम के साथ तुलसी विवाह करते हैं। तो उसको करने से कुछ नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, वो उनको थोड़ा सा तो कृष्ण भक्ति में प्रगति कराएगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि तुलसी की बढ़िया सा एकदम उसे वो पूजा उपासना करते हैं, सजाते हैं और सालिग्राम के साथ बहुत सुंदर से एक भक्तिमय कार्य जैसे लग रहा है। तो उसको भक्त को त्यागना नहीं चाहिए। अगर कोई हरे कृष्ण भक्त हो गया चल रहा है उनके घर में तो उसको त्यागने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है, अच्छा उदाहरण है। और कोई उदाहरण कोई बताएंगे? या तो रीति रिवाज के
एकादशी का पालन करना।
ठीक है,
जन्माष्टमी। हाँ, जन्माष्टमी भी करते हैं थोड़े।
हाँ ठीक है। और कोई मतलब जो भक्ति से डायरेक्टली ऐसे संबंध नहीं रखते?
शुद्धिकरण के नियम है जो भक्ति के अनुकूल उसको ले सकते हैं।
जैसे
आचमन करना हो, स्वच्छता के पालन करना हो,
स्वच्छता का पालन करना है,
सूतक में पालन करते हैं, सूतक का हमारा पालन करते हैं,
सूतक का पालन करते हैं, ठीक है।
गौ सेवा,
हाँ,
गायों की सेवा करते हैं।
हाँ,
तो फिर वो
तो गायों की सेवा जो करते हैं भले उनको भक्ति के बारे में इतना नहीं पता है परंतु वो कर रहे हैं तो ठीक है, कर सकते हैं। जो भक्त लोग हैं वो ऐसे चीजों को ले सकते, परंतु गाय की सेवा क्या है विशेष रूप से भक्तों के लिए भी कही गई है, परंतु यहाँ ऐसे चीजों के बारे में बताया गया है जिसके बारे में हो सकता है प्रत्यक्ष कोई आदेश न भी हो, भक्ति का अंग न हो, परंतु उसे भी हम स्वीकार करते हैं। ऐसे करते हैं कोई चीज है? ज्योतिष शास्त्र, यदि अनुकूल हो थोड़ा बहुत कर लेते हैं,
वास्तुशास्त्र
अनुकूल जितना है कर लेते हैं, परंतु तो बहुत ज्यादा नहीं, प्रतिकूल नहीं बनाना चाहिए उसको, फिर हम वास्तु कॉन्शियस हो जाएंगे, कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो जाएंगे। संयमित जीवन ठीक है, आयुर्वेद के हिसाब से ठीक है, और योगासन करते हैं स्वास्थ्य के लिए करते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं अरे प्रभुपाद ने योग के बारे में इतना इतनी कड़ी निंदा की थी, आप लोग योग क्यों करते, योगासन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, कितने भक्त करते हैं योगासन, क्यों आप प्रभुपाद के विरोध में जा रहे हैं, ब्रह्मचारी होकर तो क्यों करते हो आप योगासन, तो क्योंकि योगासन करने से हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ शरीर से भक्ति अच्छी तरह से कर पाएंगे, इसलिए हम करते हैं, है ना। तो भक्ति के लिए ये अनुकूल है। और कोई उदाहरण, वैक्सीनेशन स्वास्थ्य के लिए हो गया, यदि हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ उचित है अनुकूल है जिसके द्वारा हम भक्ति और अच्छी तरह से कर सकें, तो वो भी अनुकूल माना जाता है भक्ति के लिए। हाँ बहुत अच्छा, ये उदाहरण मैं सुनना चाहता था। तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहना क्या ये भक्ति का अंग है, नहीं, ये तो वर्णाश्रम धर्म का अंग है, शुद्ध भक्ति का अंग नहीं है, फिर भी हम स्वीकार करते हैं, क्यों, अनुकूल है। तो वर्णाश्रम धर्म के पद्धतियों से व्यवस्था से हम उन चीजों को स्वीकार करते हैं जो हमारे भक्ति के लिए लाभदायक हो सकती हैं, अन्यथा ये चार आश्रम जो हैं, ये चार वर्ण भी हैं, ये भक्ति नहीं है, ये तो बहुत ही तीन गुणों के अनुसार ये सब है ना, विभाजन तो तीन गुणों के अनुसार हुआ है, जो सत्व गुण में है वो ब्राह्मण है, रजोगुण में है वो क्षत्रिय है इत्यादि। फिर भी ऐसे विभाजन का लाभ क्या होता है कि हम एक सुरक्षित स्थिति में रहते हैं जिसके कारण हम अच्छी तरह से स्थिरता से भक्ति कर सकते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ हाँ, जैसे सत्य बोलना है और ये सब चीजें, तो ये अच्छे हैं भक्ति के लिए अनुकूल है, परंतु कभी कभी ये प्रतिकूल भी हो सकते हैं, इसलिए ये भी हमें समझ लेना चाहिए, कभी योगासन भी प्रतिकूल हो सकते हैं, कभी ब्रह्मचारी बनना भी ये प्रतिकूल हो सकता है, ब्रह्मचारी सोचता है मैं भी ब्रह्मचारी हो गया भक्त बनने की क्या आवश्यकता है, अभी यही करूँगा। तो जब तक ये अनुकूल है, जो चीज़ें अनुकूल हैं, जिस मात्रा में अनुकूल हैं, उस तब तक उन्हें हमें देखना चाहिए। हाँ हो सकता है, अभी तो उदाहरण दिए योगासन के, ब्रह्मचारी आश्रम के, हाँ, तो जिस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। नहीं नहीं, हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए अनुकूल है, हमारे भक्ति के लिए अनुकूल अर्थात क्या है, फेवरेबल, लाभदायक है, हमें मदद करता है इसके बारे में। हाँ भक्ति के कार्य जो सपोर्ट करता है, जो भी अनुकूल है हमारे भक्ति के लिए, जो हानि नहीं पहुंचाता है हमें।
हाँ और सत्वगुण का वातावरण,
हाँ जैसे यहाँ सात्विक वातावरण है, तो ये सात्विक वातावरण अनुकूल है, परंतु
प्रतिकूल
भी हो सकता है, तो हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे उस चीज का प्रयोग करें। जैसे हरि नाम का भी दुरुपयोग हो सकता है ना, नहीं, नाम के बल पर पाप करना इत्यादि, मोबाइल फोन अनुकूल प्रतिकूल देखना चाहिए। हाँ ये अनुकूल अभी तो चार नियम अनुकूल है प्रतिकूल है अनुकूल है। ये चार नियम भक्ति के अंग नहीं है। चार नियम पालन करने से क्या हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे? नहीं, परंतु फिर भी हमारे भक्ति के साधन के लिए अनुकूल है। हम इसका पालन करते रहेंगे तो भक्ति में अच्छी तरह से प्रगति करेंगे। ठीक है। वैसे चार नियम पालन करने वाले और भी बहुत लोग हैं, परंतु हो सकता है वो भक्त ना हो, परंतु इस चीज को हम लेते हैं। तो धार्मिक तत्वों को लेना, सत्व गुण से कुछ लेना, और बाहर की दुनिया से भी हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, गाड़ी है, ये है, कितने चीजें लेते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। कम से कम क्या होना चाहिए? अविरुद्ध होना चाहिए, अनुकूल। और दूसरा शब्द है अविरुद्ध। ये शब्द कहाँ आता है भगवद गीता में? धर्मो विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो इसका क्या अर्थ है?
जो धर्म के विरुद्ध ना होकर वो काम भगवान के प्रतिनिधि है।
वो मैं हूँ भगवान कहते हैं। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। तो वो काम जो धर्म के अविरुद्ध है वो मैं हूं। इसका अर्थ है कि ऐसे भी कोई काम है जो कि धर्म के विरुद्ध है, तो धर्म के अविरुद्ध जो काम होता है वो मैं हूं। तो ये अविरुद्ध शब्द जो विरुद्ध नहीं है इसको भी जानना आवश्यक है। ठीक है। हाँ
जब ऐसे जो सहकारी चीजें हैं जो भक्ति में सहकारी करती है और भक्ति के स्वयं जो नवयुवा भक्ति के अंग है, जब दोनों में एक चीज कोई चुनना पड़ता है
ऐसे फिर से तो
जैसे उदाहरण जैसे सूर्य ग्रहण का समय है और ऐसा कहा जाता है उस समय हमें कुछ नियम पालन करने चाहिए, लेकिन उस समय हमको विग्रहों की सेवा भी करनी है, तो उस समय हमें कैसे क्या मापदंड होना चाहिए?
ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे कभी कभी थोड़े द्वंद्व हो जाते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण आदि है, ग्रहण के समय ऐसे बताया जाता है कि हम अशुद्ध हो जाते हैं, है ना? तो अशुद्ध अवस्था में हमें भोजन नहीं लेना चाहिए, भजन करना चाहिए, अर्चा विग्रह की सेवा नहीं करनी चाहिए, ऐसे एक नियम है। शुद्ध भक्ति के रास्ते में क्या करना चाहिए?
ये
थोड़ा अलग विचार हो गया। एक विचार और एक विचार हो गया। और तो जब बंद करना है तो किसके लिए बंद करना है फिर? अभी वास्तव में प्रभुपाद जी ने इस ग्रहण आदि के लिए इस मात्रा में महत्व दिया जितना समाज में अवमान्यता न हो। इस दृष्टि से यदि हम वैसे प्रभुपाद ने कहा अंदर पर्दे के पीछे बंद दरवाजे में आप अर्चा विग्रह की सेवा करो, भगवान को भूखा नहीं रखो, क्योंकि वैसे भगवान तो कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, परंतु पुजारी अशुद्ध होता है ना, क्योंकि पुजारी तो मनुष्य है। तो तो कोई विचार कह सकता है कि भाई पुजारी अशुद्ध है तो अशुद्ध अवस्था में वो कैसे कर सकता है, जैसे स्मशान जाने के बाद व्यक्ति अशुद्ध है तो पुजारी को भी स्नान करके फिर अर्चा विग्रह की सेवा करनी होती है। तो अभी ग्रहण के काल में सभी लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब पुजारी अशुद्ध है तो भले भगवान हरे सब समय शुद्ध रहें तो फिर कैसे किया जा सकता है, ऐसे कई लोगों का तर्क है भक्तों में भी। परंतु इससे श्रेष्ठ एक नियम ये है कि भगवान को भूखा नहीं रखा जा सकता, भगवान की सेवा होनी चाहिए। तो भगवान को बिना प्रसाद भोग हम रखेंगे, कभी कभी बहुत लंबे सेवा होती है, भगवान को ऐसे सुला के रखें जबरदस्ती उनको उपवास करवाएं, एकादशी के दिन को भी हम भगवान को भूखा नहीं रखते, उनको चावल देते हैं, अन्न देते हैं, हम नहीं लेते, हाँ, परंतु भगवान को तो सारी सेवा चलती है, जैसे वैसे चलती है भगवान की सेवा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका कैसे समन्वय किया कि बंद दरवाजे के पीछे जो सेवा है करो, परंतु मंदिर बंद रखो ग्रहण के समय, ताकि लोग निंदा ना करें कि अरे ये देखो ग्रहण के समय भी ये लोग पूजा कर रहे हैं, ये किस तरह से वेद के पालक हैं, तो लोग ऐसे निंदा करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा दरवाजा बंद कर लो, मंदिर ऐसे घोषणा कर लो कि मंद ग्रहण के कारण मंदिर बंद है, परंतु केवल पुजारी अपनी सेवा करेंगे और पुजारी भी उपवास करेगा, पुजारी भी ग्रहण शुरू होने के पहले भोजन कर लेगा, स्नान कर उसके बाद नहीं लेगा, और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है स्नान करके वो प्रसाद ग्रहण करेगा। केवल भगवान की सेवा बंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए जितना भी आवश्यक है वो उतना ही करेगा, भगवान को सुलाना हो, जगाना हो, उनका श्रृंगार करना हो, उनको भोग बनाना हो इत्यादि। हाँ ठीक है, ये अच्छा उदाहरण है। हाँ
वो समय में भगवान का सेवा के लिए हम भोग बनाया, भगवान को प्रसाद अर्पण किया, वो सभी ग्रहण का समय में भगवान ने स्वीकार किया, तो वही समय पे वो ग्रहण का प्रसाद भी जब हम निकाला तो वो हम लोग बाद में ग्रहण का बाद वो हम स्वीकार कर सकते।
अभी बाद में किया जाए क्योंकि भगवान का प्रसाद है ये, इसलिए ये अशुद्ध नहीं होता। साधारण अन्न अशुद्ध हो सकता है, परंतु भगवान का प्रसाद कैसे अशुद्ध हो सकता है, सही है ना। हाँ ये भावना है, क्योंकि भगवान का प्रसाद सदैव दिव्य रहता है, किसी भी जैसे जगन्नाथ प्रसाद का महाप्रसाद होता है ना, उसमें प्रथा है कि जैसे ही जगन्नाथ प्रसाद आपके सामने आए, भले आपने स्नान किया हो न किया हो, उसको स्वीकार कीजिए। ये एक और अच्छा उदाहरण है इसके लिए। तो साधारण प्रथा, शौच की प्रथा, स्वच्छता की प्रथा ये है कि स्नान करने के पहले भोजन नहीं, कुछ खाना नहीं चाहिए, परंतु जब जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद सामने आता है तो भले हमने स्नान किया हो या नहीं, हमें तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। किन्होंने किया था इसी प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य ने किया, जैसे नींद से जागे और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु दरवाजे पे थे, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कृष्ण कृष्ण कह के जागे, कौन इतने जल्दी आ गए, और फिर चैतन्य महाप्रभु आए, अरे सार्वभौम देखो जगन्नाथ का प्रसाद लाया हूँ, तो तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया। अरे सार्वभौम तुम इतने शुद्ध ब्राह्मण हो और तुमने स्नान भी नहीं किया और तुमने भोजन ले लिया, प्रसाद ले लिया, बोला कि स्नान वान ये जाए, जाने दो, जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद है, ये दिव्य है, सारे हमारे नियम वगैरह सब जाते हैं भगवान के प्रसाद के सामने। उन्होंने ग्रहण कर लिया ये प्रसाद। तो इसमें क्या हुआ कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करना ये सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए अन्य जितने भी नियम हैं उनका उल्लंघन करके एक श्रेष्ठ नियम का पालन किया। निम्न श्रेणी के विधि को या निषेध को तोड़ा जा सकता है जब किसी ऊपरी श्रेणी के नियम का पालन करना पड़ता है तब, अन्यथा नहीं। साधारण अवस्था में हमको करना चाहिए। इसलिए हमारे दैनिक जीवन में भी, हमारे मंदिरों में जब हम रहते हैं तो हमें स्नान करके ही प्रसाद लेना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते सार्वभौम भट्टाचार्य ने किया था तो हमें भी करना है। हाँ ठीक है। हाँ सूतक वगैरह
सूतक हो जाएगा तो तब हम हमारे घर में जो विग्रह है तो वो खोलते नहीं या उनको सेवा करते नहीं घर।
ये घर के विग्रह है ना, तो इसलिए इसमें छूट दी जा सकती है। तो साधारण तौर से उस समय घर के अंदर लोग अशुद्ध माने जाते हैं, इसलिए वो घर में भोजन नहीं बनाते हैं या कम से कम नहीं बनाना चाहिए उनको। परंतु सामाजिक परिस्थिति अभी बहुत बदल चुकी है। पहले क्या हुआ करता था कि जिस घर में किसी का देहांत हुआ है, देहांत ही नहीं जन्म के बाद भी, जन्म भी हुआ है किसी घर में तब भी सूतक लगता था, तो पड़ोस में लोग रहते थे, वो आके खिला देते थे, तो इसलिए ये सब हो जाता था। परंतु आजकल ऐसे सब लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं, वो भावना नहीं रही कि हमारे पड़ोसी को जाके दे दें, कौन बनाएगा प्रसाद फिर घर में, कौन सबको खिलाएगा, क्या होगा। तो कभी कभी भक्तों के घर में ऐसे होता है अन्य भक्त आके दे देते हैं उनको, तो ऐसे चलता है। तो भक्त समाज में ऐसे होना चाहिए, ऐसे सहयोग होना चाहिए सारे भक्तों के बीच में कि एक के घर में ऐसे हो गया तो अन्य भक्तों ने आके उनको प्रसाद दे दिया, ताकि घर में पकाने की आवश्यकता नहीं रही, भगवान को भोग चढ़ाने की आवश्यकता नहीं रही। तो उस समय भगवान को घर के विग्रहों को विश्राम दिया जाता है। ठीक है। हाँ
किसी मंदिर में हम जाते हैं, जैसे शिवजी का मंदिर या दुर्गा मंदिर, तो उधर वो लोग पुजारी रहता है, वो चरणामृत देते हैं, तो दे सकते हैं यार। जो अभी महाप्रसाद रहता है तो हम नहीं लेते, जिसमें प्याज लहसुन रहता है तो हम नहीं लेते, लेकिन चरणामृत या दूध रहता है तो उसको प्राशन कर सकते हैं, क्या अनुकूल है?
वैसे तो अनुकूल नहीं है, क्योंकि देवी देवताओं का प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में भक्तों के लिए स्पष्ट आदेश है। चैतन्य भागवत में भी हरिदास ठाकुर ने भी कहा है इस बात को। परंतु यदि किसी वैष्णव ने उस देवी या देवता को भक्ति भाव से भोग चढ़ाया है, इस भावना से कि ये भगवान के दास हैं दासी हैं, और या तो फिर उनको भगवान का प्रसाद ही महाप्रसाद ही अर्पण किया है, तो निश्चित ले सकते हैं इस भावना से यदि किया हो। परंतु वैष्णव यदि किया हो तो फिर हम स्वीकार कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, क्योंकि वो सही भावना से अर्पण किया गया था। परंतु कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वो अपमानित हो जाते हैं यदि हमने नहीं लिया, तो ठीक है, हम छोटी सी बात है चरणामृत, तो इस भावना को ध्यान में रख के कि हे शिव जी आप परम वैष्णव हैं, ऐसे धारणा बना के हम ले लेते हैं। और अन्य कोई देवता है उनका प्रसाद लेते हैं मंदिर में जाके, कोई बड़े श्रद्धा से देते हैं तो हम ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, जाके किसी और को दे सकते हैं जिनकी श्रद्धा ऐसी है वो ले लें। जैसे कल हम यहाँ गाँव में गए थे ना, तो उनकी यहाँ सीताराम लक्ष्मण की मंदिर, हनुमान का मंदिर है, तो सीताराम है तो हमें प्रणाम करना चाहिए उनको, है ना। भले जो पुजारी हैं उनकी धारणा क्या है कि सीताराम कौन है क्या है, उनकी राम तत्व क्या है, उनका विचार उनका हमें नहीं पता, परंतु हम देखते हैं कि श्री राम सीता के विग्रह हैं तो हम प्रणाम करते हैं। दूसरा मंदिर था जहाँ पे एक मंदिर में बहुत से चित्र थे, पांडुरंग और विट्ठल और रुक्मिणी के चित्र दो थे, और भगवान विष्णु या नारायण के चित्र कहीं थे, सीताराम लक्ष्मण हनुमान के चित्र थे, और साथ साथ उनके जो गांव की गांव की जो देवी है, कुल देवी है जो, वो उनका भी था। तो ठीक है, हम प्रणाम करेंगे ना, तो प्रणाम करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, परंतु इस भावना से नहीं कि ये परम है। तो हमारे मन में जो भावना है वो प्रणाम करते समय करेंगे, ठीक है। हाँ, ये केवल गांव की समस्या नहीं है, सब जगह शहर में भी हो सकता है, तो हमें दूर जाना चाहिए, उनसे कहना चाहिए मत करिए। तो यदि ऐसे ऐसे हो सकता है तो उनको समझाना चाहिए, पहले से ही समझा लें कि देखो हम वैष्णव हैं और हम भगवान के दास हैं, इसलिए हम ऐसे किसी का प्रणाम स्वीकार करना हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये हम इस योग्य नहीं हैं, इसलिए आप बुरा मत मानिए ऐसे करके। और यदि दूर से कोई करना चाहे ना तो प्रणाम ठीक है, स्वीकार करना, अभी हम भगवान के प्रतिनिधि होके गए हैं तो लोग करते हैं, तो फिर स्वीकार करना पड़ता है कभी कभी। और एक बार प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा था, कोई स्पर्श कर ले तो क्या करना चाहिए, सर को स्पर्श, करंट वापस जाएगा। क्योंकि जब कोई हमारे पैरों को स्पर्श करता है ना, तो उसके कर्म हमें लेने पड़ते हैं, है ना।
गांव में बहुत सारे लोग एक ही बार रहते हैं, एक दो को बोल सकते हैं, तो वो बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे छूते 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 जाते हैं, उसमें बहुत सारे माता जी भी बहुत सारे लोग आते हैं,
इसलिए मैंने सबसे पहले कहा कि पहले से ही घोषणा कर देनी चाहिए, हाँ, ताकि सबको पता चले कि आपको प्रणाम करना है तो दूर से ही कीजिए। ये करते हैं, लेकिन कृष्णाश्रय प्रभु का प्रश्न है कि क्या सोचते हैं वो लोग, हम अछूत हैं क्या, तो इसलिए हम उनको पहले से समझा देना चाहिए, तो फिर वो पूरा नहीं मानेंगे।
एक्चुअली जब गांव में जाते हैं जहाँ पर भी है, वहाँ पे एक तो तीन गृहस्थों को अच्छी तरह से ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, वो बॉडीगार्ड जैसे, यानी दे शुड बी देयर, और वो बताना चाहिए कि नहीं छो छो मत, दूर से प्रणाम करो, नहीं नहीं स्वामी जी के पैर पैर नहीं दूर से ही, ऐसे नहीं करते, दूर से ही करते, ऐसा कोई तो चाहिए साथ में। तो एक बार वो हो गया प्रथा, तो नहीं तो पैर छूने का प्रथा हो गया तो बार
देना है। एक बार हम लोग गए पुस्तक में, जैसे प्रवेश किया गांव में, तो दूध का घड़ा पहले भरा हुआ था, हम लोग सब जगह परेशान हो गए, एक गांव में पहुंच गए, अभी हमने सोचा कि एक जगह शांति से प्रसाद ले लेंगे, दूध का घड़ा पहले से ही भरा हुआ था, हमें नहीं मालूम था, फिर वो लोगों ने देखा वहां से आ रहे हैं, चलो लेके आ गए, तो अभी कैसे क्या करेंगे, तो फिर वो हम लोग प्रसाद लेते लकड़ी रख रहे, उसको रखा आइए, हम लोग सब एक दूसरे को देख रहे थे अभी कौन बनेगा। फिर अभी हमने वही था, हम लोग नहीं नहीं के ऊपर खड़ा रहिए बाद में जाके, हमने एक को खड़ा किया, ये हमारे महाराज है। सबको डाला जैसे हो गया, उसे ऊपर से डाल दो नहीं भागने के लिए भी। ऐसा इमरजेंसी कुछ हो तो स्वीकार कर से करके पास तो गुरु
भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं जो श्रवण कीर्तन के लिए योग्य नहीं है वो मेरे लिए काम करो, मेरे लिए आप मेहनत करके काम करो, इसके लिए भी योग्य नहीं है 12वें अध्याय में तो आप दान दो। तो बहुत सारे भक्त श्रवण कीर्तन के लिए योग्य नहीं है, तो वो उत्साह से कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण कीर्तन के आधार पे ही हमारा भक्ति का उत्साह होता है।
जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं श्रवण कीर्तन आदि के द्वारा, उनको किसी न किसी तरह से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे कुछ प्रसाद ग्रहण कर उनको जाके प्रसाद दें, चाहे कुछ गीता का उपदेश उनको दे दें, उस और कुछ और सेवा में लगा दें, जैसे दान देना चाहते हैं कुछ उत्सव के लिए मंदिर के लिए, तो ऐसे धीरे 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 से उनकी सुकृति बढ़ जाएगी और आज नहीं तो कल वो भक्ति में लग जाएंगे, धीरे धीरे से हो जाएगी रुचि। जैसे जैसे भक्तों का संग मिलेगा, जैसे जैसे धीरे धीरे से वो भक्ति करेंगे, मतलब ये सुकृति करेंगे, थोड़ी थोड़ी सेवाएं करते रहेंगे, वैसे वैसे प्रगति होगी उनकी। दीक्षा नहीं, वो हरिनाम था। देखो गौड़ी मठ में दीक्षा की प्रणाली और इस्कॉन में थोड़ी अलग है। गौड़ी मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय केवल चार माला में उनको हरिनाम दे देते थे, परंतु उसको ठीक से दीक्षा नहीं की जाती थी, कही जाती थी। तो केवल फिर उसके बाद कहते थे चार नियम का पालन करो, चार माला कर रहे हो ना, ठीक है, दे देते थे। आज भी गौड़ी मठों में अनेकों में ऐसे करते हैं, परंतु जब अब जिसको हम दूसरी दीक्षा कहते हैं उसको वो पहली दीक्षा मानते, उसको दीक्षा मानते हैं। उस समय फिर वो अपेक्षा करते हैं कि 16 माला हो कम से कम, और 64 से भी 16 करते हैं, अभी कुछ 64 में दीक्षा नहीं देते हैं आजकल क्योंकि समय बदल रहा है। तो फिर नियमों का पालन करना चाहिए वगैरह वगैरह, वो सारे हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने एक दीक्षा को दो भागों में विभाजित किया, तो पहली दीक्षा में हरिनाम उसको दीक्षा हो गया, पंच संस्कार होते हैं ना दीक्षा के, उसमें से थोड़े पहले दीक्षा में आ गए, थोड़े दूसरी दीक्षा में आ गए। तो दूसरी दीक्षा का तात्पर्य है अर्चा विग्रह की सेवा करने के लिए, जो मंत्र आदि चाहिए, याग मंत्र हो चाहिए, परंतु कृष्ण नाम, एक कृष्णदास का एक नाम होता है वो मिल जाता है। फिर पुंड्र, ऊर्ध्व पुंड्र भी मिल जाता है, और ताप, ताप मतलब कोई तपस्या हम जो करते हैं, वैसे ताप का मतलब ये है मुद्रा, परंतु ताप ये भी हो सकता है थोड़ी तपस्या भगवान, इसके अलग तात्पर्य हैं। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे विभाजन किया इनका, क्योंकि उनको पता चला कि शायद आवश्यक है, तो वो अभी प्रथा इस्कॉन में चल रही है, ठीक है।
जिसे हम देखते हैं, जैसे जब हम इस कौन से जुड़े धीरे धीरे लोग भक्ति की पुस्तकें पढ़ते हैं तो नियम हम धीरे धीरे भक्ति के पालन करना चालू करते हैं। वास्तविक में इतनी आसक्ति नहीं होती पर नियम करते करते साधना भक्ति के द्वारा वो आता है। पर अपनी साइड में महाराज जी हम देखते हैं उधर वृंदावन या अपने आगरा साइड में उधर बहुत लोग को हम देखते हैं कि उधर नेचुरल एक आसक्ति है भगवान के प्रति, उनका भगवान के प्रति भोग लगाना, भगवान के प्रति एक आसक्ति एक भाव है, पर वो नियम और वो सब नहीं समझते और वो शुद्ध भक्ति के गुण भी नहीं दिखते हैं जो हम प्रभुपाद की पुस्तकों में जैसे देखते हैं जैसे होने चाहिए, तो वो कौन से भक्ति मानी जाएगी? वो पर आसक्ति बहुत देखने को मिलती है करके, मतलब मिस नहीं होना चाहिए वो भगवान के लिए, हमेशा दिमाग में वो रहता है कि ठाकुर जी की सेवा करनी है सेवा करनी है, पर जो हम गुणों को देखते हैं वो भी नहीं दिखते हैं, भौतिक भी चीजों में मन लगता है, वो कौन से टाइप की भक्ति है?
ये प्राकृत भक्ति है ना, प्राकृत भक्ति अर्थात निष्ठ भक्ति, जिसमें भक्ति का मिश्रण तीन गुणों से है। एक भक्ति भाव है परंतु उतनी गहराई से समझ नहीं है, गहराई से स्पष्ट ज्ञान नहीं है। श्रद्धा है तो फिर आगे चल के और नियमों का पालन नहीं होता है, इसको प्राकृत भक्ति कहते हैं। उनमें से हो सकता है थोड़े लोग भी नियम का पालन करें, बहुत शक्ति से करें, अपना जप वगैरह सब करें, हो सकता है, तो ऐसे लोग तो आगे बढ़े हुए होंगे। वो लोग जो केवल अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं वो भाव है, फिर वो प्राकृत भक्ति होता है, अन्य नियमों का पालन नहीं करते हैं, है ना। परंतु वास्तव में यदि ऐसे कोई भाव हो किसी के प्रति कि भगवान के विग्रह के बारे में इतनी परवाह होती है तो निश्चित थोड़ा थोड़ी भक्ति तो है और थोड़े थोड़ा ज्ञान तो होगा निश्चित। परंतु यदि ये केवल एक औपचारिकता बन जाए, केवल एक पारंपरिक रिवाज हो गई, चलो देखते आए इस चीज़ को चलो करो, फिर भी लाभ होगा परंतु आने वाली पीढ़ी में और उसको और ढीला हो जाएगा, फिर दूध का पानी होता रहे धीरे 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 से, जो दो दो पीढ़ियों पहले कर किए जा रहा था उससे फिर और कम हो गया, फिर से और कम हो गया, ऐसे फिर खत्म हो जाता है।
महाराज दूसरा प्रश्न है कि जैसे आज सुबह चर्चा हो रही थी कि जो रीति रिवाज है उसमें गृहस्थ भक्त लोग धीरे धीरे शिक्षित होकर और प्रशिक्षण लेके करना चाहिए, तो उसमें एक प्रश्न है महाराज जी, जैसे कि पहले का जो ब्राह्मण के जो कार्य रहते थे जो वो करते थे तो समाज में एक आदान प्रदान की व्यवस्था थी, अभी जैसे कोई ये सीख के कोई करता है तो आर्थिक व्यवस्था का मान लीजिए अगर वो पैसा मांगते हैं तो वो संस्था का भी नाम ये होता है कि पैसा मांगते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, चार्ज लगाते हैं, और अगर वो नहीं करें तो उसका कैसा व्यवस्था होना चाहिए और कैसी चेतना होनी चाहिए?
वैसे ये नहीं, संस्था की बात नहीं है, जो दक्षिणा जीत दी जाती है वो व्यक्ति विशेष को दी जाती है, जो जाके वहाँ पे कोई संस्कार करेगा, कोई यज्ञ करेगा, कोई और भी कोई बात तो वो उसको दक्षिणा देना चाहिए।
तो अगर मांगेंगे तो क्योंकि वो
जैसे जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए कैसे करते थे, वो देते थे ना,
वो स्वयं से देते थे, पर अभी तो मांगने का जो,
हाँ कभी कभी क्या होता है जैसे हमारे संस्था की ओर से जाते हैं ना भक्त लोग, तो अधिकतर जब एक ऑफिशियल जैसे कार्यक्रम होता है हम लोग जाते हैं तब भक्त लोग नहीं मानते हैं, मांगते नहीं हैं, पर यदि आगे चल के देखो समाज में ऐसे भक्तों की आवश्यकता होगी, जब वो किसी भक्त को बुलाएंगे क्योंकि ये एक भक्त है ब्राह्मण है जो कि कर रहे संस्था के प्रतिनिधि होंगे, नहीं एक संस्था का ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं होगा, तब फिर उनको देना पड़ेगा। जब संस्था की ओर से एक ऑफिशियल प्रोग्राम किया जा रहा है तो फिर नहीं मांगना है। और दूसरी बात, हरि नाम के लिए कभी दान नहीं लेना, मतलब दक्षिणा नहीं लेना चाहिए कि मैं हरि नाम करूंगा आपके घर में और आप दक्षिणा मुझे दे दो, इतनी रकम मुझे चाहिए तब मैं आके आपके यहाँ हरि नाम संकीर्तन करूंगा, ये अपराध हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। जो खुशी से वो कुछ दान देना चाहते हैं उन्होंने दिया ठीक है, अन्यथा नहीं।
हरिनाम अगर इंडिविजुअल लेवल पे भी संस्था के कार्यक्रम में नहीं, हम इस्कॉन से
संबंधित हैं, जुड़े हुए भक्त हैं, और गृहस्थ नियम के लिए कुछ पालन ऐसे वैदिक पालन करते हैं अलग अलग घर में जाके, तो उन चीजों के लिए दक्षिणा तो हम ले सकते हैं, पर वो मांगनी चाहिए या उनसे ही वो जितना
वो देंगे उतना। हरि नाम को और भक्ति को व्यवसाय नहीं बना सकते, जीवन की एक साधन नहीं बना सकते। भागवत का पठन हो या हरि नाम संकीर्तन हो, ये पैसे कमाने के साधन नहीं है। यदि दक्षिणा चाहिए तो अन्य जो संस्कार आदि होते हैं, कोई विवाह संस्कार कर दिया, किसी ने गृह प्रवेश कर लिया, किसी ने और कोई संस्कार घर में जाके उपनयन संस्कार कर लिया, तो ठीक है, उसमें यजमान को चाहिए कि वो दक्षिणा दे।
उसमें मांग सकते हैं अन्य संस्कारों में, या वो
भी मांगना कुछ अच्छा नहीं है। दक्षिणा मतलब जो जैसे चाहे उसे देना, यजमान के ऊपर है। वो यजमान फिर अपने हृदय से देगा। एक प्रथा थी, एक संस्कृति है ना, कि जैसे चलो कोई आए हमारे घर में तो अपने मन से अपनी शक्ति के अनुसार दान, दान मांगा नहीं जाता, दक्षिणा दक्षिणा मांगी नहीं जाती। इसने हाथ ऊपर किया था ऐसा,
वही जब हम सेकंड दीक्षा लेते हैं, जो ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, जो गायत्री करते हैं, कि कभी कभी ट्रैवलिंग में या कुछ कर नहीं पाते, सो वो तो टाइम तो निकल जाता है, तो उसको गुरु का अवज्ञा कहते हैं।
जहाँ तक हो सके पालन करने का प्रयास करना चाहिए, परंतु ऐसे अनायास कुछ हो जाता है परिस्थिति के कारण तो ठीक है, इतने कोई ऐसे अपराध वगैरह इतना बड़ा नहीं है, परंतु जहाँ जिस परिस्थिति में है वहाँ पे करने, जब रेल में सफ़र कर रहे होते हैं या लंबे जहाज हवाई जहाज़ की यात्रा में जा रहे होते, तो और कोई उपाय नहीं ना, तो हवाई जहाज़ में करना होता है, रेलगाड़ी में करना होता है, कभी कभी गाड़ी में चलते चलते करना होता है। हालांकि ये अच्छा नहीं है, परंतु उस समय तो कोई उपाय नहीं है, 24 घंटे की यात्रा है तो क्या करेंगे, तीन बार की करना है ना गाइडलाइन वगैरह।
नेक्स्ट डे करके
उसको
ऐड किया नहीं जाता, इसीलिए
वो समय का महत्व है ना, उस समय पे करना चाहिए। दो बच्चे अंतिम एक दो प्रश्न,
पिछले सत्र का प्रश्न था महाराज, कि ऐसे पुस्तकों को भक्तों को ऐसे पढ़ना चाहिए या नहीं जिसमें भक्ति के सहकारी कार्य बताए गए, जैसे संस्कार को करना, तो अगर जैसे हमारे गोस्वामी ने दिए हैं उसको कुछ विस्तृत पुस्तक नहीं मिल रहे या फिर कुछ और अन्य ज्ञान चाहिए, तो क्या उनको अन्य पुस्तकों को अन्य संस्थाओं को पढ़ना चाहिए?
यदि वो हमारे भक्ति के प्रतिकूल न हो और यदि हमें इतनी परिपक्वता है कि हम उसमें बह नहीं जाएंगे और हम हमारे संस्था के भक्तों के लिए अन्यों के लिए सेवा की दृष्टि से देख रहे हैं, तो फिर उसमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु सही ढंग से हमें समझना चाहिए इस बात को। हाँ, और अंतिम प्रश्न, हाँ कृष्ण,
माता पिता के चरणों को स्पर्श कर सकते हैं?
हाँ,
क्योंकि हम जैसे कहते हैं स्पर्श करने पर तो हमारा पाप उनको लगता है, हमारा कर्म उनको लगता
है। ऐसे भारतवर्ष में वैदिक सभ्यता में एक प्रथा है, माता पिता के चरणों का स्पर्श करना बड़ों का, इसलिए जब ऐसे सभ्य क्लिष्ट भाषा में हिंदी में क्या कहते हैं, चरण स्पर्श, चिट्ठियों में भी कहते हैं चरण स्पर्श, तो भले हम प्रत्यक्ष चरण स्पर्श न कर पाए, करें भी तो ठीक है, माता पिता हैं ठीक है, लेकिन अभी भक्त हैं तो पाप नहीं है, तो इसलिए
हाँ
बच्चों में नहीं। कोई बात नहीं। हाँ अंतिम प्रश्न।
महाराज भारत में हम देखते हैं कि जो भी पहले के पुराने मंदिर हैं,
पहले के
पुराने मंदिर हाँ, हाँ। उसमें देखते हैं कि एक तो एंट्रेंस को बड़ा घंटा रहता था और एक रिचुअल भी था कि उधर कोकोनट को ऑफर करते थे भगवान को उसको फोड़ के। लेकिन इस्कॉन में हम ऐसे देखते हैं कि ये तो कोकोनट का जो सिस्टम ही नहीं है और घंटा भी बहुत छोटा रहता है। तो वो अभी तो प्रभुपाद जी जाके न्यूयॉर्क में पहले चालू किए और उसके बाद हम वेस्टर्न सिस्टम कह सकते हैं और बाद में भारत में इसको भी लागू करें।
कोकोनट हो ना हो भक्ति हो इतने महत्वपूर्ण बात नहीं है। इससे अच्छा ये है कि जो टेंडर कोकोनट है उसके लिए कि भगवान को अच्छा पानी अर्पण करो। ये भी नारियल तोड़ना ठीक है, इसका भी एक पीछे कुछ कारण है, परंतु ये आजकल एक रिचुअल हो गया है। वो
ट्रेडिशनल मंदिर में दीप लगाते हैं। दीप लगाते हैं
वैसे गरुड़ स्तंभ आदि होता है उसके ऊपर लगाते हैं। बहुत सारी प्रथाएं हैं परंतु हमारे लिए भक्ति की प्रधानता होने के कारण जिस स्थान में जो जगह हमें मिल गई उसमें हम मंदिर बना लेते हैं। अभी हमारे जहाँ मंदिर है राधा गोकुलानंद मंदिर, वो तो पहले क्या क्या होता था उसमें जानते हैं ना। हाँ दीप लगा सकते हैं, आपके एक आधुनिक दीप है बल्ब तो लग जाता है।
कोकोनट लाए तो भी हम ऑफर करके यूज कर सकते हैं, लाके रख सकते हैं उधर।
इंडिया में जनरली जो मेंटालिटी है उनका है कि कोकोनट ऑफर करना है।
हाँ तो ऑफर कर सकते हैं लेकिन फोड़ने की आवश्यक कोकोनट भोग चढ़ेगा भगवान को, अर्थात कोकोनट का प्रयोग उपयोग रसोई में कर सकते हैं। फिर कोकोनट को काट के फिर कोकोनट ने उसका जो आदिन है अर्पण किया जा सकता है। ठीक है तो ठीक है अभी विश्राम करते हैं प्रसाद के लिए। कितने बजे मिलेंगे? साढ़े तीन बजे मिलेंगे। हरी बोल।
वो 3:30 से सब लोग समय पर आइए।
अभी अच्छी तरह से प्रसाद पाइए। और क्या क्या बात करना चाहिए प्रसाद के समय? कुछ भी ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत मुश्किल है ना करना।